लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा फ्रांसिस के वो अंतिम पल एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस की मृत्यु पास का सोमवार 21 अप्रैल 2025 को प्रातः 7:35 में वैटिकन के उनके निवास संत मार्था में हृदय आघात और हृदय गति रुकने से हो गई। इसके पहले दिन पास्का रविवार को उन्होंने कलिसियाई परंपरा के अनुसार उर्बी एत उर्बी रोम और विश्व के नाम अपना संदेश प्रेषित करने हेतु वैटिकन संत पेत्रुस महागिरजा घर के झरोखे में उपस्थित हुए थे। रोम और विश्व के नाम अपने संदेश के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने विश्व के सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को पाप क्षमा का प्रेरितिक अंतिम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने अपने निजी स्वास्थ्य सेवा सहायक मैसिमिलियानो सात्रापेत्ती से यह पूछा कि क्या उनका वैटिकन के प्रांगण में विश्वासियों के बीच जाना उचित होगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। और यह उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपनी चारागाह की भेड़ों के बीच जाएं, जिनकी निष्ठा में देखभाल उन्होंने विगत 12 सालों से की थी। अपनी असमर्थता और शारीरिक कमजोरियों के बावजूद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की थी, जो निश्चित ही उनके लिए कठिन, थकान भरी, साथ ही खतरे से खाली नहीं था। यह हमारे लिए संत पापा फ्रांसिस के हृदय में अपने लोगों के प्रति प्रेम, मिलन और उनके बीच में सदा रहने की तीव्र इच्छा को व्यक्त करता है। निसंदेह यह प्रेम मिलन की चाह थी, एक सच्चे प्रेम की निशानी जो सभी बाधाओं के परे जाती और अपने को अपनों के पास ले जाती है। संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य सेवा सहायक मैसिमिलियानो सात्रापेत्ती ने भले चरवाहे की अंतिम इच्छा को भली भांति जाना और आने वाली घटनाओं को भी भांप लिया था। उन्होंने शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन मानसिक रूप से मजबूत और सबल निष्ठावान चरवाहे की नब्ज पकड़ ली थी। अतः उन्होंने संत पापा फ्रांसिस भले चरवाहे को अपनी रेवड़ के पास जाने की हामी भरी और उनका भरपूर सहयोग दिया। मैसिमिलियानो ने संत पापा को पापा मोबाइल में आखिरी बार सवारी करने हेतु न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि उन्होंने उनकी हर संभव मदद की। इन सारी बातों का विवरण हमें स्वयं मैसिमिलियानो सात्रापेत्ती के साक्ष्य में मिलता है, जो संत पापा की नम्रता और दीनता के भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे वापस स्क्वायर में लाने के लिए धन्यवाद। इन शब्दों में हमारे लिए दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के हृदय की कोमलता और छोटे बच्चों की सरलता स्पष्ट देखने को मिलती है। ये उनमें नामित करने वाले कुछ एक वे महान गुण थे जिनके साथ उन्होंने अपने 12 वर्षीय परमाध्यक्षीय काल को अपने लिए नहीं वरन ईश्वर की सेवा के लिए जिया, जिन्होंने उन्हें एक चरवाहे के रूप में कैथोलिक कलीसिया का सिरमौर नियुक्त किया था। सात्रापेत्ती वे नर्स हैं। संत पापा ने उन्हें सन 2022 से अपने निजी स्वास्थ्य सेवक सहायक नियुक्त किया था। सात्रापेत्ती ने रोम के जेमेली अस्पताल से अब तक करीबन 38 दिनों तक वैटिकन के संत मार्था में संत पापा फ्रांसिस की देख रेख की। एक दिन पहले सात्रापेत्ती ने संत पेत्रुस की महागिरजा घर का दौरा करते हुए उन बातों का जायजा लिया था कि वे संत पापा को किन मार्गों से होते हुए वैटिकन के झरोखे तक ले जाएंगे। उन्होंने संत पापा के अंतिम पलों का जिक्र करते हुए कहा कि पास्का रविवार संत पेत्रुस के प्रांगण से लौटने के उपरांत संत पापा ने चुपचाप खाना खाया और फिर दोपहर में आराम किया। संत पापा का भीड़ को गले लगाने की चाह के बारे में उन्होंने बतलाया कि पास्का रविवार को उनकी चाह संत पेत्रुस के प्रांगण में उपस्थित लोगों को पापा मोबाइल में सवारी करते हुए देखने और अंतिम बार आशीर्वाद देने की थी। यद्यपि उन्हें थोड़ा संकोच हुआ कि वे ऐसा कर पाएंगे, अतः उन्होंने उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? अपने सेवाकर्मी से अपने लिए निर्णय स्पष्टता की मांग हमारे लिए इस बात को स्पष्ट करती है कि उन्होंने निश्चित रूप में निर्णय लेने के संबंध में स्वयं के सोच और विचारों को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि दूसरों के विचारों को सुनना और जानना चाहा, जिसे हम उनके द्वारा प्रस्तावित कलीसिया के स्वरूप सिनोडालिटी कलीसिया में देख सकते हैं। कोई भी नेता या समाज का अगुवा केवल ऐसा उस परिस्थिति में कर सकता है जब वह स्वयं अपने विचारों और भावनाओं, अपनी स्वार्थपूर्ण चाह पूर्ति के दायरे से ऊपर उठता हो। संत पेत्रुस के प्रांगण में पास्का रविवार को संत पापा ने विश्वासों के बीच करीबन 20 से 25 मिनट व्यतीत किए। उन्होंने विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया और अपनी असमर्थता और थकान की स्थिति में भी अपने हाथों को उठाते हुए उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। वे विभिन्न स्थानों में रुके और जैसे कि वे हमेशा करते आए हैं, बच्चों को अपना विशेष स्नेह और आशीर्वाद दिया। श्रोताओं, संत पापा की शारीरिक दुर्बलता के कारण हमें उनके चेहरे को कैमरे में नहीं दिखाया गया, लेकिन निश्चित रूप में उनकी जो प्रतिक्रिया रही वो हमें यह कहती है कि वे भीड़ अपनी रेवड़ के निकट बच्चों और बीमारों सबों से बातें करने की चाह रखते थे। जमिल्ली के अस्पताल से बाहर आने के बाद संत पापा फ्रांसिस की उनकी पहली सवारी थी, जो उनके जीवन की आखिरी यात्रा रही। संत पापा की प्राथमिकता अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने की थी और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता हमारे लिए इस बात से पता चलता है कि अपने 12 वर्ष के परम धर्माध्यक्षीय काल में उन्होंने कभी ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं लिए, जिसके लिए उन्हें भारी आलोचना का शिकार होना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसके कभी परवाह नहीं की। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने अपने प्रेरितिक कार्यों को पूरा करना जारी रखा, जिसे हम उनके परमाध्यक्षीय काल में मानवीय संबंध की प्रधानता स्वरूप पाते हैं, जिसकी चर्चा करते हुए उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि मुझे मित्रों की जरूरत है, जिसके कारण मैंने अपने लिए वैटिकन के प्रेरितिक निवास के बदले संत मार्था में रहने का चुनाव किया। संत पापा के जीवन के अंतिम क्षणों की चर्चा करते हुए मासिमिलियानो स्ट्रापेत्ती कहते हैं कि उन्होंने पास्का रविवार दोपहर को आराम किया और शांतिमय तरीके से रात्रि का भोजन ग्रहण किया। सुबह करीब 5:30 बजे अचानक बीमारी के पहले लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद उनकी देखरेख करने वालों ने तुरंत उनकी मदद की। करीब 1 घंटे बाद संत मार्था के अपने निवास दूसरे तल्ले में बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने अपने निजी सेवक स्त्रापेत्ती को हाथों से इशारा करते हुए विदाई के भाव व्यक्त किए और फिर कोमा में चले गए। उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद लोगों के अनुसार उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, यह सब जल्दी जल्दी बिना दुख दर्द के पूरा हो गया। उनकी मृत्यु चेतना में लगभग अचानक बिना किसी लंबी पीड़ा या सार्वजनिक चिंता के हुई। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस का निधन पास्का सोमवार के दिन हुआ, जो निश्चित रूप में जीवनदाता की ओर से बुलावे का निर्धारित दिन कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने अपने को उस स्थान पर व्यवस्थित किया जहां से उन्होंने अपने परमाध्यक्षीय काल की शुरुआत की थी। उस झरोखे में अंतिम बार आते हुए उन्होंने रोम को और दुनिया को अपना अंतिम प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और इस भौतिक दुनिया से विदा ली।
श्रोताओं, संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में संत पापा फ्रांसिस के सम्मान में कल शाम को रोजरी प्रार्थना की गई। प्रार्थना का नेतृत्व करते हुए कार्डिनल मंडल के डीन ने कहा, संत पापा फ्रांसिस आशा के तीर्थयात्री जो निराश नहीं करते। सैकड़ों श्रद्धालुगण अत्यंत भावुक और ध्यानमग्न वातावरण में रोजरी प्रार्थना में उपस्थित हुए। संत पापा फ्रांसिस द्वारा कई बार कहा गया यह निमंत्रण, मेरे लिए प्रार्थना करना न भूलें, इन शब्दों के साथ कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवानी बत्तीस्ता रे ने मंगलवार की शाम को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में संत पापा फ्रांसिस के लिए रोजरी प्रार्थना की अगुवाई की। 91 वर्षीय कार्डिनल बत्तीस्ता, जो शनिवार 26 अप्रैल को संत पापा फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की अध्यक्षता करेंगे, ने कहा, हम जानते हैं कि मृत्यु कोई ऐसा द्वार नहीं है जो बंद हो जाता है, बल्कि स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश द्वार है, जहां विलाप नृत्य में बदल जाता है और टाट का कपड़ा ईश्वर के प्रेम की असीमता में आनंद के वस्त्र में बदल जाता है। फिर कार्डिनल ने उन उपहारों के लिए धन्यवाद देने हेतु आमंत्रित किया जो उन्होंने संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक मंत्रालय के साथ पूरी कलीसिया को दिया। संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रखी और सफेद एवं गुलाबी फूलों के गुच्छे से सजी कलीसिया की माता मरियम की छवि के समक्ष कार्डिनल रे ने पेत्रुस के दिवंगत 266वें उत्तराधिकारी को माता मरियम की मध्यस्थता में सौंपते हुए रोजरी प्रार्थना की महिमा के भेद का नेतृत्व किया। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने मंगलवार को दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की याद में रोजरी प्रार्थना का नेतृत्व किया, जो संत मरिया मेजर महागिरजाघर में लगातार दूसरी शाम थी। धर्म विधि की शुरुआत में कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने कहा, जैसा कि प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाते हैं, हमें स्वर्ग की ओर से अपनी निगाह उठाने और ईश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे मसीह का चिंतन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और हम इस शाम की प्रार्थना में विशेष रूप से अनंत जीवन का आनंद लेने के लिए स्वर्ग की ओर देखते हुए, जैसा कि हम अपने प्यारे संत पापा को धन्य माता मरियम सालुस पोपोली रोमानी को सौंपते हैं, स्वर्गीय पिता के समक्ष माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करें। कार्डिनल पारोलिन ने रोजरी के महिमा के 5 भेदों की अगुवाई की। अंत में कार्डिनल पारोलिन ने याद किया कि कैसे संत पापा फ्रांसिस ने अपने जीवन के अंत में दुनिया में शांति और लोगों के बीच भाईचारे के लिए अपने कष्टों को झेला। उधर कार्डिनल मंडल की आम सभा वाटिकन में शुरू हुई, जो संत पापा फ्रांसिस की मृत्यु के बाद प्रार्थना, चिंतन और तैयारी की अवधि की शुरुआत को चिन्हित करती है। संत पापा फ्रांसिस की आत्मा की शांति के लिए मौन प्रार्थना के एक क्षण के साथ मंगलवार की सुबह कार्डिनल मंडल की पहली आम सभा शुरू हुई। इस अवसर पर धर्म सभा हॉल में लगभग 60 कार्डिनल एकत्रित हुए और प्रेरितिक संविधान यूनिवर्सी डोमिनिकी ग्रेसिस के अनुसार उन्होंने इस अंतराल और नए रोमन संत पापा के चुनाव को नियंत्रित करने वाले मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने की शपथ ली। इसके बाद पवित्र आत्मा का पारंपरिक आह्वान गाया गया। इसके बाद पवित्र रोमन कलीसिया के कैमरलिंगो कार्डिनल केविन फारेल ने संत पापा फ्रांसिस की वसीयत पढ़ी। कार्डिनल मंडल ने संत पापा के विचार विमर्श तक निर्धारित संत घोषित किए जाने के समारोह को स्थगित करने का निर्णय लिया। कार्डिनलों ने संत पापा के पार्थिव शरीर के स्थानांतरण और उनके अंतिम संस्कार की तिथियों की पुष्टि की, जो शनिवार 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगा। प्रेरितिक संविधान के मानदंडों के अनुसार 3 कार्डिनलों को एक आयोग के सेदे वेकेंट के दौरान कलीसिया के प्रशासन में कमरलेंगो कार्डिनल केविन फारेल की सहायता करने के लिए लॉटरी द्वारा चुना गया। ये 3 कार्डिनल कार्डिनल मंडल के 3 आदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हर 3 दिन में बदले जाते हैं। इस प्रकार चुने गए 3 कार्डिनलों का पहला समूह कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन, कार्डिनल स्तानिस्लाव रिल्को और कार्डिनल फाबियो बागियो हैं। इतालवी गणराज्य के राष्ट्रपति सर्जो मत्तरेला अपनी पुत्री लौरा के साथ वाटिकन के कासा सांता मार्ता के चैपल में संत पापा फ्रांसिस के पार्थिव शरीर का दर्शन किया। वे संत पापा को देखकर भावुक हो गए। जिनके साथ उन्होंने वर्षों से सम्मान और मित्रता का रिश्ता विकसित किया था और जिन्हें उन्होंने उनकी मृत्यु पर क्विरिनाले द्वारा जारी वीडियो संदेश में एक संदर्भ बिंदु के रूप में परिभाषित किया था। राष्ट्रपति मत्तरेला हाल ही में सांतो स्पिरितो के रोमन अस्पताल में पेसमेकर प्रत्यारोपित करने के लिए हुए ऑपरेशन से उबर रहे हैं। यह ऑपरेशन सफल रहा और इसकी सूचना संत पापा को दी गई, जो उस समय कासा सांता मार्था में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। संत पापा ने 16 अप्रैल को राष्ट्रपति मत्तरेला को एक नोट भेजकर स्वयं को उनके समक्ष उपस्थित करना चाहा, जिसमें उन्होंने हार्दिक निकटता के साथ प्रार्थनाएं व्यक्त की थी। राष्ट्रपति मत्तरेला ने अपने वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस को लोयोला के संत इग्नासियस और असीसी के संत फ्रांसिस के दो करिश्मे, सुसंस्कृत जेस्विट और ईश्वर के गरीब व्यक्ति के बीच पूर्ण एकीकरण के रूप में परिभाषित किया। राष्ट्रपति मत्तरेला ने 3 आधारशिलाओं पर प्रकाश डाला, जिन पर संत पापा फ्रांसिस ने अपना परमाध्यक्षीय कार्य आधारित किया था। सबसे कम भाग्यशाली लोगों के साथ निकटता, शांति के लिए आग्रहपूर्ण और जिद्दी आह्वान, जलवायु और पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान। राष्ट्रपति मत्तरेला व्यक्तिगत भावना को साझा करने में भी विफल नहीं हुए, जो संत पापा फ्रांसिस की पिता के घर में वापसी ने उनमें उत्पन्न की है। मैं खालीपन की भावना महसूस करता हूँ। संदर्भ के इस बिंदु से वंचित होने की भावना, जिसे मैंने देखा था, उन्होंने एक सरल और शक्तिशाली छवि की स्मृति पर ध्यान केंद्रित करने से पहले कहा। संत पापा फ्रांसिस हमेशा आशावान व्यक्ति रहे हैं, हर कठिनाई के बावजूद आश्वस्त रहे। वह बंदिशों और प्रतिबंधों के उन दिनों में भी ऐसे ही थे। बीमारी के इस दौर में वे उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे जो पीड़ित हैं। उधर अमर उजाला के अनुसार संत पापा फ्रांसिस के निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। 22 और 23 अप्रैल को शोक रहेगा और एक अन्य दिन उनके अंतिम संस्कार के दिन यानी शनिवार 26 अप्रैल को शोक मनाया जाएगा। संत पापा फ्रांसिस पूरी दुनिया में शांति, सेवा और करुणा के लिए जाने जाते थे। उनका निधन सिर्फ ईसाई समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। भारत सरकार ने भी इस दुख की घड़ी में संवेदना जताते हुए उनके सम्मान में यह फैसला लिया है। उधर रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद ने संत पापा फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने रांची महाधर्म प्रांत के विश्वासियों के नाम जारी पत्र में कहा, हमारे प्रिय संत पापा फ्रांसिस कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष के 88 वर्ष की आयु में निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। उन्होंने स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हमारे स्वर्गीय पिता के घर लौटने के लिए इस सांसारिक जीवन को छोड़ दिया। अब हम उनकी आत्मा को ईश्वर की असीम दया और प्रेम को सौंपते हैं। संत पापा फ्रांसिस मसीह के हृदय के अनुरूप एक चरवाहा थे, जो अपनी नम्रता, सरल जीवन और सुसमाचार के प्रति दृढ़ रहने की भावना के साथ थे। अपने शब्दों और अपने कार्यों और अपने प्रार्थनापूर्ण उदाहरण के माध्यम से उन्होंने चुनौतियों और आशा के समय में कलीसिया का मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें मसीह के साथ गहन संवाद और एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेम का आह्वान किया था। संत पापा फ्रांसिस ने धर्म सभा की जो विरासत छोड़ी है, संवाद, भागीदारी और मिशन को अनंत काल तक याद रखा जाएगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगी। नमस्कार।